Market Mantra, Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. आज के अंक में श्रोताओं देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की जो हलचल है उस पर भी हम चर्चा करेंगे. चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन. सुषमा, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
धन्यवाद प्राची.
श्रोताओं चर्चा आगे बढ़ाएंगे, शुरू करेंगे, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
Benchmark domestic stock market indices increase. Sensex rises over 900 points. Nifty settles above 24,000. Major Asian stock markets end in the positive zone. And Asian Development Bank raises India's growth forecast to 6.9% for the current fiscal.
देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में उछाल. सेंसेक्स 900 से ज्यादा बढ़ा, वहीं निफ्टी 24,000 के ऊपर बंद हुआ. प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में वृद्धि हुई और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय वृद्धि दर का अनुमान 6.9% लगाया.
And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer announcement. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
तो श्रोताओं जैसा कि अर्जुन ने अभी बताया कि किसी भी तरीके का निवेश करने से पहले अपनी जांच पड़ताल, अपनी सूझबूझ और समझ को व्यापक तौर पर जो है समृद्ध कर लें और उसके बाद फिर निवेश करें. शुरू करते हैं भारतीय बाजार से कि आज शेयर बाजार ने दिन के अंतराल में कैसा प्रदर्शन किया. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में व्यापक खरीदारी के चलते आज 1% से अधिक की वृद्धि हुई. दोनों ही सूचकांक सत्र के दौरान मजबूती से आगे बढ़ते नजर आए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 919 अंक बढ़कर 77,550 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 276 अंक बढ़कर 24,051 पर आ गया. इससे पहले श्रोताओं वैश्विक सूचकांकों में तेजी देखने के बाद घरेलू शेयर बाजार भी उच्च स्तर पर खुले.
Benchmark domestic equity indices surged over 1% today, supported by broad-based buying across sectors. Sensex rose by 919 points to close at 77,550, while Nifty added 276 points to settle at 24,051. Earlier markets opened on the higher side, mirroring gains in global indices. Both the Sensex and the Nifty traded firmly throughout the session.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 कंपनियों के शेयरों ने मुनाफा कमाया. शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में एशियन पेंट्स लगभग 4%, आईसीआईसीआई बैंक 3.2% से अधिक और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3% की वृद्धि हुई. वहीं घाटे में रही कंपनियों में सबसे पहला नाम सनफार्मा 3.6% से अधिक, इन्फोसिस लगभग 3% और टीसीएस के शेयर 2.4% से अधिक गिरे.
Among the sectoral indices of the Bombay Stock Exchange, 23 out of the 25 sectors logged gains. Among the outperformers, auto surged over 2.7%, capital goods rose almost 2.3%, then consumer durables advanced by 2.2%. Conversely, IT plunged 1.7% and focused IT fell over 1.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 3,360 companies advanced, 945 companies declined and 144 companies remained unchanged.
और अब श्रोताओं आइए जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 के मुकाबले रुपया 7 पैसे कमजोर होकर 92.73 रुपए पर बंद हुआ. डॉलर सूचकांक जो अन्य छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाता है, वो दिन के कारोबार में 98.76 पर कारोबार कर रहा था। सुषमा, आज हमने देखा कि बाजार में एक बार फिर रौनक आई है। अगर सेंसेक्स सूचकांक की बात करें तो 919 अंक का उछाल आया है।
बिल्कुल।
तो आज के प्रमुख कारणों में से जो एक हमने देखा कि फाइनेंशियल सेक्टर में काफी बाइंग हुई है, ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव हमें नजर आ रहे हैं, क्या इसके इतर भी कोई ऐसे प्रमोटर्स हैं जिनकी वजह से बाजार में हमें उछाल देखने को मिला?
देखिए, ओवरऑल जो बाजार की जो खुशहाली दिखाई दे रही है, और इस हफ्ते हमने देखा है कि ये बुलिश ट्रेंड एकदम से आया, कितने हफ्तों के बाद ये मार्केट वॉलिटिलिटी रही है और काफी डिप्रेस मामला रहा है स्टॉक मार्केट में, लेकिन इस हफ्ते सडनली
तिजड़िये भारी रहे।
बिल्कुल। तो इस हफ्ते सडनली एक अचानक से वो खुशियां लहर आई हैं स्टॉक मार्केट में। और ये क्यों है? ये इसलिए है कि जो युद्ध चल रहा है वेस्ट एशिया में, उसका सीज फायर का ऐलान हुआ है, और इस ऐलान के बाद आज ये भी खबर आ रही है कि कल शायद यूएस और ईरान और इसराइल के बीच में बातचीत होगी। अब ये जो उछाल आया है, जैसे सारी दुनिया में सबको इंतजार है कि ये जो शांति का एंटिसिपेशन समझ लीजिए है, ये सीज फायर हुआ है सिर्फ दो हफ्ते के लिए, लेकिन उम्मीद ये है कि ये सस्टेनेबल पीस हो जाएगा। लेकिन इसमें खैर कोई देयर इज नो सर्टेनिटी अबाउट दिस, और लोगों को अभी भी फिक्र है, लेकिन मार्केट को इस वक्त जो शॉर्ट टर्म पॉजिटिव आउटलुक है, उस वजह से आज और पिछले दो तीन दिनों से ये मार्केट का रिएक्शन हुआ है,
यानी सतर्कता अभी भी बरकरार है बाजार।
हाँ,
में
बिल्कुल।
सुषमा, एक्सपर्ट्स लाइक योरसेल्फ आर सेइंग दैट वन कैन एक्सपेक्ट अ रिलीफ रैली बेस्ड ऑन व्हाट्स हैपनिंग जियोपॉलिटिकली।
यस,
देयर इज अ लॉट ऑफ शॉर्ट कवरिंग ऑफ स्टॉक्स अक्रॉस सेक्टर्स वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू बाइंग राइट नाउ।
यस यस,
फंडामेंटली स्पीकिंग ऑल्सो द अर्निंग्स रिजल्ट्स आर बीइंग पोस्टेड फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। 8 कंपनीज have already posted out of 5,066 companies on the BSE and the NSE, and today there were two companies that posted their results, so it's not a major news.
Yes.
My focus is on the IT sector because it actually went down by 1.7%. It's bellwether stock, TCS for instance, posted very good results, but despite that, we are seeing the IT index actually come down. Is there profit booking going on right now? But there's also other bellwether stocks who are going to post their results, like Infosys, for instance. Why is it that we are seeing an uptick in the other sectors like auto, capital goods, and consumer durables, but exactly the opposite for the IT index?
See, IT is not directly affected by the war per se. IT is, you can take on a different basis. IT, the impact of the AI issue is still hanging over the IT sector. The fact that Indian IT companies are having to sort of pivot away from what they traditionally did and to incorporate AI in their offerings and trying to meet the challenge of this new global scenario, this of artificial intelligence. And this is an area where the perception is that perhaps Indian IT companies are not yet geared up to meet this challenge. And of course, we also have the problem that globally, IT companies, not just our Indian IT companies, have been cutting back, have been, for instance, Oracle has cut a huge number of staff, even in this country. And that has been happening in India. Now, India, of course, you have had, cuts in staff as well as hiring at the same time. You have big tech companies like Google, which have been hiring as well. So it's a mixed picture. But the fact is that the IT sector Has not been affected really by the, you know, I talked about the war and the impact on the stock markets. Now, IT sector is a service, so it's not really affected by whether petroleum products are coming into the country or energy. But of course, they are affected in the sense that you have power, data centers, but it's not an immediate impact. So the impact of the problems of the IT sector remains. So it's a kind of an overhang of the perception that Indian IT companies are still having to gear up to meet this this challenging situation.
Notwithstanding that, the earnings are in US dollars. And what we have seen is that gold and silver prices have come down because sanctions have been lifted. And there is a drive towards the US dollar, even though the index today, in fact, is under 100. It's below 99. But the US dollar is in great demand. If you're looking at compensation that is going to be made geopolitically, they prefer in the US dollar as well, which is the international reserve currency for all intents and purposes. So, but the revenue guidance seems to be healthy, even though the employment count has been hit. But somehow, the IT index was the worst hit when the correction was taking place in the market what's happening in West Asia.
Yeah.
And even now,
there
seems to be a sentiment, investor sentiment, which is not quite with the IT sector.
So that's what I was saying. It's still, you know, it's not moving in tandem with the rest of the market because there are other factors which are affecting it. And those are factors not linked to the West Asia conflict. These are the issues that have been plaguing the IT sector for the last couple of months. In fact, you know, we had an AI summit. In fact, things got worse after the AI summit because when, you know, there was a perception that so many countries have advanced so much with this technology and Indian companies perhaps do not have these kind of large language models. And we are not able to keep pace. Though, of course, India models have come up and, you know, it's looking very good for things like AI Sarvam and a lot of Indian models are now coming into the market. But still, there is a perception that the Indian IT sector has a long way to go.
We've also seen that the equity markets are likely to get a boost and Amfi data has now come up that equity investments are likely to go up, even though there's a relief rally right now and short covering in the market. But fundamentally, India has been seen as a growth story. RBI has set the tone by saying India will grow at 7.6% for this financial year. Next financial year, 6.9%. And even the Asian Development Bank has a very favorable forecast. It seems that now macroeconomic gross domestic product metrics are matching equity inflows into the market despite what's happening in West Asia.
Yeah. So one of the things that is important for regarding equity flows in India is, of course, our domestic investors. So domestic investors have actually rescued the market because we have had for quite some time, you have had the scenario of foreign institutional investors pulling out. Now but at the same time, the Indian market has remained fairly stable because of the faith that the domestic investor, retail investor has in the India story. And in fact, that's in one way in which the Indian stock markets stand out from the rest of Asian markets, emerging markets, because there's no other market which has this kind of support from domestic investors, which has been a very positive thing.
सुषमा, क्योंकि आईटी सेक्टर विशेष में आपने इतने विस्तार से समझाया, एक सवाल है जो अभी भी मन में अटका हुआ है और शायद कई सारे निवेशक जो हमारे श्रोता भी हैं उनके जहन में भी ये सवाल हो कि इतनी अनिश्चितताओं के बीच में जहां पर आईटी सेक्टर जिसको हम डार्लिंग ऑफ स्टॉक मार्केट कहते हैं,
हाँ बिल्कुल, हाँ
वो आने वाले समय में आप उसे कैसा आप उसका अवलोकन करती हैं कि वो किस तरीके से एक मतलब अपनी अदाकारी निभाते हुए नजर आएगा?
देखिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो आईटी सेक्टर में इसका कोई देयर इज नो डाउट कि आईटी सेक्टर अभी भी ये जो चैलेंज है इसको मीट कर सकता है. और इन्होंने अपनी रीस्किलिंग की है, इन्होंने अपने जो जो सर्विसेज हैं उनमें बहुत बदलाव करवाया है और इनकी हायरिंग भी बदल गई है. तो इनका बिल्कुल जो कहते हैं ना, उन्होंने अपने कंप्लीटली चेंज इन चेंज इन एटीट्यूड, चेंज इन स्ट्रैटेजी किया है ताकि वो आजकल की जो नया जमाना है, नया एनवायरनमेंट है, उसमें वो ऑपरेट कर सके। तो मेरे ख्याल में इसमें हमारी जो आईटी कंपनीज हैं, अभी टीसीएस की बात हुई, वो सब इतनी बड़ी कंपनी है, जो इंफोसिस है वो बहुत इनोवेटिव है। तो हमारी कंपनीज वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट देम। और मेरे ख्याल में कुछ वक्त की बात है, और इंडियन, जैसे मैंने कहा, इंडियन हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं एआई के, वो भी बढ़ के आ रहे हैं, और बहुत जल्दी, और ये लॉन्ग टर्म सिनेरियो मैं आपको बता रही हूँ कि लॉन्ग टर्म में आईटी कंपनीज हमारी काफी सक्सेसफुल रहेंगी,
बलिष्ठ नजर आएंगी।
बिल्कुल,
आगे बढ़ते हैं श्रोताओं। भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश इस वर्ष मार्च में 56% बढ़कर पिछले 8 महीनों के उच्चतम स्तर 40,450 करोड़ रुपए पर पहुंचा, जबकि फरवरी में ये 25,978 करोड़ रुपए था। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एम्फी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एसआईपी के माध्यम से निवेश पिछले महीने रिकॉर्ड 32,087 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो खुदरा निवेशकों की निरंतर भागीदारी को दर्शाता है। मार्च में म्यूचुअल फंड उद्योग में कुल मिलाकर 2.39 लाख करोड़ रुपए की कुल निकासी देखी गई, जबकि फरवरी में 94,530 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। इसका मुख्य कारण डेट फंड योजनाओं से भारी निकासी रहा। डेट फंड श्रेणी में मार्च में 2.94 लाख करोड़ रुपए की भारी निकासी हुई, जबकि पिछले महीने 42,106 करोड़ रुपए निवेश किए गए। सुषमा, जैसा कि बताया जा रहा है और मैंने पढ़ा भी कि खुदरा निवेशकों की एक बड़ी अहम भूमिका रही है इस पर।
बिल्कुल, तो हम यही बात कर रहे थे, ये जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं
जी,
इन्होंने इंडिया ग्रोथ स्टोरी में इतना दे हैव पुट देयर फेथ इन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी
रियल टाइम,
और जितना आउटफ्लोज चल रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अभी 6-7 महीने में, उतना डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स वो करते जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट, कोई रोक नहीं है ये DII's का। तो ये जो आपने डेटा अभी बताया उस दर्शाता है कि ये जो फेथ है हमारी ग्रोथ स्टोरी में, और मेरे ख्याल ये फेथ जस्टिफाइड है क्योंकि अगर इंडिया जो सबसे तेज गति की जो ग्रोथ है पूरे विश्व भर में अभी तक की, तो अगर इसमें फेथ नहीं है तो फिर कहाँ होगा।
हाँ। बिल्कुल, लेकिन दूसरे पक्ष में अगर हम देखते हैं तो डेट फंड योजनाओं से जो है वो भारी निकासी भी हुई है,
तो वो तो मेरे ख्याल में दैट इज जस्ट अ चेंज इन एटीट्यूड डेट ओरिएंटेड स्कीम से, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द सिनेरियो। तो जो एडवाइजरीज आते हैं अपने जो सबके चार्टर्ड अकाउंटेंट से और अपने एनालिस्ट से, तो ये तो थोड़ी बहुत चेंजेस होती है, बट लार्जली अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो बहुत ही, इट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री, इट्स सर्जिंग, इनफ्लोज आर सर्जिंग और बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट सबसे, अगर आप दुनिया भर में देखें, इतनी तेज रफ्तार से और कहीं नहीं है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री
जी।
In more news, Asian Development Bank has raised India's growth forecast for the current fiscal year 2026-27 to 6.9% from 6.5% earlier, citing resilient consumption despite a challenging global environment. According to ADB's Asian Development Outlook, growth in India is expected to remain robust in the current fiscal, underpinned by strong domestic demand, easing financing conditions and lower US tariffs on Indian goods. ADB notes that country's economy is expected to rise to 7.3% in the next fiscal, driven by domestic reforms, effects of trade agreements with the European Union, and expected government salary increases. So the ADP has focused on consumption, salary hikes being linked to that as well. But my question is, oil and gas linked inflation concerns, even though there is the possibility of a ceasefire and compensation so that this does not happen, at least in the near future, I'm sure the spot market for oil and gas is still very high because of what's happening at the Strait of Hormuz. How do you see India's growth affected as a result of it in real terms, not in nominal terms?
You see, the ADB's perception In fact, they're revising their growth forecast for the current fiscal is very interesting. But it tallies with the assessment of other foreign investment agencies, not investment research agencies, I would say, who have had a look at the respective impact of this energy crisis on various Asian countries. And they sort of dismiss the impact as far as India is concerned and say that it's kind of an outlier. If you find that a lot of countries in Asia have already taken very serious steps to deal with the non-availability of petroleum products, like Pakistan, which has brought in a four-day working week. The Philippines has done something, have done some kind of rationing. Indonesia. So all these countries have reacted very sharply to the petroleum crisis, whereas India has not done anything really. Not only that, all these countries, the prices of petroleum products, especially petrol and diesel, have been raised significantly. Now, in this country, the price has been maintained of petrol and diesel, the pump prices. One of the reasons is that the oil marketing companies have been able to they have a cushion of resources, because over the last 2 years, when international oil prices had fallen low, they had not reduced the price for the consumer. So therefore, they had that cushion of financial resources, and they're using it now. And that's why the government is not giving them any real support on this sector, except in the case of LPG. So, in fact, the other thing that has been mentioned by, as I said, international research agencies is that India has significant petroleum reserves, petroleum storages. Of course, we do not have enough. We need to increase them. But we have reserves for about 75 days. The other thing is that we have tied up with a large number of countries. We have diversified our imports of oil and gas. Mm. As we are buying oil and gas from as many as 40 countries now. Our imports from Russia, which had gone down, have now been increased after this West Asia conflict. Our imports are going up from a large number of countries, you know, which we had not heard of earlier, like Brazil, Guyana, from in Africa. There are certain African countries.
Even sanctions have been lifted. Yes. By the US itself.
Yes,
on
that's
Russian
what I mean. Yes.
Imports.
Yes.
You know, my next question, it's very relevant, is the US Supreme Court decision also has lowered import tariffs to 10%. Is that sustainable?
No, the tariffs, you see, right now, what this US Supreme Court has ruled on, we really. We really will not know what is the situation, because India is entering into a deal with the US government. So when the US government says the tariffs are, you know, X amount percent, depending on what the Supreme Court says, then only we can say, all right, we will deal with this level of tariff. So we have to wait.
बिल्कुल श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. आज प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में तेजी देखी गई. जापान का निकेई 1.8% से अधिक, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.4%, हांगकांग का हैंगसैंग और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.5% से अधिक, और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ. बात करें यूरोपीय बाजार की, तो प्रमुख यूरोपीय सूचकांक भी आज सकारात्मक रुख के साथ कारोबार कर रहे थे. जर्मनी का डैक्स 0.8% से अधिक, फ्रांस का कैक 0.7% से ज्यादा, और लंदन का फुटसी अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.3% से ऊपर कारोबार करता नजर आया.
Major US stock market indices extended gains yesterday as ongoing negotiations towards a resolution to the West Asia conflict helped ease investors' worries. The Nasdaq Composite Index climbed over 0.8%, the S&P 500 added 0.6%, and the Dow Jones Industrial Average jumped nearly 0.6%. On the economic front, real GDP increased at an annual rate of 0.5% in the fourth quarter of 2025, down from the earlier estimate of 0.7%. According to the third estimate released by US Bureau of Economic Analysis, real GDP increased by 4.4% in the third quarter of last year. A separate report by the BEA showed that the core as well as the headline personal consumption expenditures price index increased by 0.4% in February on a monthly basis. On an annual basis, core PCE inflation advanced by 3%, down from 3.1% in January, while the headline inflation measure increased by 2.8%. Very briefly, employment in the US has certainly improved.
Well, things in the US definitely, they are looking up, in this sense, but inflation is going up. So, you have to balance the higher employment with the growing inflation.
आगे बढ़ते हैं. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि भारत पश्चिम एशिया संकट के बीच मॉरिशस की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए उसके साथ तेल और गैस की आपूर्ति से जुड़े समझौते को अंतिम रूप दे रहा है. डॉ जयशंकर ने मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट ने विशेष रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में रणनीतिक भागीदारी के महत्व को उजागर किया है. डॉ जयशंकर ने 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉरिशस में है.
Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that Qatar has reaffirmed its commitment to remain a reliable energy supplier to India. Mr. Puri said this after holding discussions with the Qatar Minister of State for Energy Affairs and President and CEO of Qatar Energy, Saad Sharida Al Kabi, in Doha. In a social media post, Mr. Puri said that during the meeting, both sides discussed all aspects of the strategic relations between the two countries, including high-level engagements, trade, investment, energy, culture, and people-to-people relations. More news, the government has said that it has successfully met the peak demand of electricity and energy requirements of the country amid the West Asia crisis. During the inter-ministerial briefing in New Delhi today, Additional Secretary of Ministry of Power, Piyush Singh, said all thermal power plants are running in full capacity with adequate coal stocks. He said that the government is planning for power capacity addition of 22,000 megawatts across thermal, solar, wind and hydro gas in the next 3 months.
Because of our strong coordination with Ministry of Coal and Indian Railways, we are able to maintain a very good stock in all our thermal power plants. Currently, the stock is around 55 million tons, which is sufficient for the next 19 days. And the supplies are very robust and continuous.
Moving on to the crude oil market, and we will get a comment on the earlier story as well. Global crude oil prices were trading largely unchanged today. Brent crude was trading almost 0.1% down at $95.85 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading flat at $97.87 per barrel when reports last came in. We've had a mix of energy news, whether it's natural gas from Qatar or it is coal reserves that are still there for our thermal power plants, crude oil imports for automobiles and passenger vehicles. That has been also imported quite effectively from Iran and Russia. How have we managed to do this?
So this is, I mentioned earlier that even international agencies are not looking at India as getting into an energy crisis, because India has done this. I mean, you see the fact that the petroleum minister, I mean, he's rushed to Qatar too, because Qatar is one of our major natural gas suppliers. So to ensure that that continues. And as I said, we have diversified our crude oil sources to about 40 countries. So, Russia, and of course, now we are even buying from Iran. So, and of course, the other thing is that coal availability is, in a very good situation. As you yourself have said, that all the thermal power plants are running without any problem. So we are the one country which has not had any energy crisis as a result of the West Asia conflict.
Let's have a look at the bullion market. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.4% down at 1,52,980 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.7% down at 2,42,740 rupees per kilogram a short while ago.
Multi-commodity exchange mein June anubandh wala sona aadha pratishat girkar 1,52,729 rupees prati 10 gram par tha, aur mai anubandh wali chandi 0.8% girkar 2,41,853 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. एक संक्षिप्त टिप्पणी मैं चाहूंगी.
देखिए, गोल्ड सोने का जो दाम है वो नीचे जा रहा है, इसलिए क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं और बॉन्ड यील्ड्स ज्यादा हैं, तो लोग इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स में जा रहे हैं, और इसी एक ये बहुत बड़ी वजह है कि सोने का दाम गिरने का.
सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए.
थैंक यू प्राची.
And the closing headlines in English. Benchmark domestic stock market indices increase. Sensex rises over 900 points. Nifty settles above 24,000. Major Asian stock markets end in the positive zone. And Asian Development Bank raises India's growth forecast to 6.9% for the current fiscal. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.